हमारे बीच एक मनोहर श्याम जोशी हुआ करते थे, ये कहना गलत होगा। एक तो वो कतई नहीं थे, कई थे, अपनी अनेकता को साथ लेकर चलते हुए। उपन्यासकार, व्यंगकार, टेलीविजन धारावाहिकों के लेखक, फिल्म पटकथा लेखक, पत्रकार, संपादक, गजब के जुमलेबाज और ना जाने क्या क्या। उनके निशाने पर थी समाज की पाखंडता, जिसे उनके अंदर के सारे जोशियों ने कभी नहीं बख्शा। मनोहर श्याम जोशी की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार।
लबो लबाब ये कि प्रेम अपनी व्यापकता, गहराई और संवेदनशीलता के चलते मानव मन को हमेशा आकर्षित करता रहा है। ये अकारण ही नहीं कि हिंदी साहित्य में बहुतेरी प्रेम कथाओं की उपस्थिति के बावजूद मनोहर श्याम जोशी जैसे संपादक और पत्रकार प्रेम कथा लिखने जा बैठे। उनका रचित कसब हिंदी साहित्य की पहली शुद्ध औपन्यासिक प्रेम कथा है। ये पूरे खिलंदड़ेपन, हास्य और संवेदना से भरा हुआ एक बेहद पठनीय प्रेमाख्यान है, शायद हिंदी का अकेला आधुनिक प्रेम उपन्यास। मनोहर श्याम जोशी की पत्नी भगवती जोशी, जिन्हें उन्होंने ये उपन्यास समर्पित किया था, उन्हें कुछ इस अंदाज में याद करती हैं
कि बहुत लंबे, आकर्षक, सुंदर व्यक्तित्व था उनका। मैं तो उनसे 1 फुट 1 इंच छोटी थी। इतने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हुए, टॉल होते हुए, वो इतना सम्मान करते थे हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का कि मैं अपने सिद्धांतों पे बड़ी अडिग रहने वाले लोगों में मानी जाती थी। उन्होंने कभी मुझसे, लोगों ने मुझसे कहा कि भगवती तुम्हारे पति तो बड़े लंबे हैं, तुम हील पहना करो। मैंने कहा नहीं, मैं हील पहनना पसंद नहीं करती। पर कभी जोशी जी ने ये नहीं कहा। वो कहने लगे तुम जितनी ऊंची हो उतने ही नीचे भी हो, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं किसी तरह की।
हिंदी पाठकों को ये जानकर हैरानगी हो सकती है कि उन्होंने किसी स्तर पर हिंदी पढ़ी नहीं थी, वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। उनको याद कर भगवती जोशी अभी भी भावुक हो जाती है।
खाना भी जैसे परोसती थी तो सबसे पहले इनकी थाली में परोसती थी, तो मेरे बच्चे बिचारों को बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, तब भी एक दिन ये घर पे नहीं थे तो खाना मैं उनको देने लगी तो मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मा पहले बब्बा की थाली में तो रखो। मैंने कहा बेटा कोई ऐसा थोड़ी है, अब इस समय यहाँ पे है ही नहीं, ठंडा खाना थोड़ी खाएंगे वो। उनको लगता था कि शायद सबसे पहले बब्बा के लिए ही परोसा जाता। आज भी जब मैं सुबह की चाय पीती हूँ, मैं गिलास पहले यहाँ पे रखती हूँ।
मनोहर श्याम जोशी के साहित्यिक पक्ष को एक तरफ रख दिया जाए तो उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई 1984 में उनके लिखे भारतीय टेलीविजन के पहले सोप ओपेरा हम लोग ने। प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं
उस समय जो तत्कालीन सूचना प्रसारण सचिव श्री गिल थे, उनको ये बात समझ में आई कि समाज को बदलने के लिए शायद सोप ओपेरा का सहारा लिया जा सकता है। तो एक मैक्सिकन सोप ओपेरा के को प्रेरणा स्रोत मानकर हिंदुस्तान के माहौल को देखते हुए एक ऐसे जिसमें परिवार नियोजन भी हो, जिसमें कुछ मूल्यों का मध्यवर्गीय प्रतिष्ठापन द्वारा हो, हम लोग लिखा गया। और जब जोशी जी ने वो हम लोग लिखा तो एक मुझे लगता है कि निम्न मध्यवर्गीय कस्बाती और शहरी समाज का जो अंतर्द्वंद है और उसमें जो संघर्ष महत्वाकांक्षाओं का है और परिवार के टूटने और परिवार के बने रहने की जो दो प्रवृत्तियां हैं, वो मुझे लगता है बहुत अद्भुत था। और कहीं ना कहीं जोशी जी ने जब हम लोग लिखा तो उसके जितने पात्र हैं, हर पात्र ने दर्शकों को अपने साथ बांधे रखा। वो जमाना था छोटे पर्दे पर काले सफ़ेद चित्रों का, तो आज अगर आप पलट कर देखें उसकी प्रोडक्शन वैल्यूज जिन्हें आप कहते हैं बहुत बुरी नज़र आती हैं, मगर अपने समय में 4 कैमरा सेटअप पर वो शूट किया जाता था और बहुत ही अद्भुत मुझे लगता है धारावाहिक होता।
पहले ही भास्कर घोष, एसएस गिल और मनोहर श्याम जोशी पर ये आरोप लगाए गए हों कि उन्होंने दूरदर्शन को लोकप्रिय बनाने के लिए किसी मैक्सिकन सोप ओपेरा से आइडिया लिया था, लेकिन गहराई से देखें तो इसके सारे पात्र किसी सोप ओपेरा के पात्र नहीं, बल्कि किसी महत्वपूर्ण साहित्यिक उपन्यास के ही पात्र थे। द दिलचस्प बात यह थी कि मनोहर श्याम जोशी हम लोग की स्क्रिप्ट को खुद लिखते नहीं थे बल्कि डिक्टेट कराया करते थे।
वो हमेशा टाइपिस्ट होता था, जब हम लोग लिखा तब तो एक असिस्टेंट भी रखा हुआ था कि भाई घटनाएं भी तो सब, वो लड़की थी एक रेखा गुप्ता, तो उसको सिनेमा के गाने वगैरह सब बड़े याद रहते थे और घटनाक्रम भी। वो कहते थे भाई तब वहाँ पे मैंने क्या कहा था याद है ना, तो वो झट लिखा हुआ देख करके बता देती। और टाइपिस्ट तो हमेशा या तो घूम के या वहीं बैठ करके डिक्टेशन देते थे, और बाद तक उन्होंने डिक्टेशन देकर ही काम करवाया, खुद हाथ से लिख ही नहीं पाते थे। कभी वो अपने लिखे हुए सीरियल देखते नहीं थे, क्यों, अगर एक शब्द भी कहीं इधर से उधर हुआ तो उन्हें फिर बहुत ही गुस्सा आ जाता था, क्योंकि तो बकवास है मैं नहीं देखूंगा तुम लोग देखो, लेकिन कान तो कहीं लगे ही रहते थे ना, अगर कहीं छूट गया तो बस ये यहाँ पे गलत कर दिया, ये ऐसा नहीं ऐसा था। लेकिन लोगों ने भी उनके इस बात की बड़ी इज्जत की कि रमेश सिप्पी जैसा डायरेक्टर जब उन्होंने बुनियाद, कभी एक शब्द को आगे पीछे नहीं करते थे।
छुटकी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नन्हे की बल्लेबाजी की बारीकियों पर रोशनी डाली, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हंसो मत, देख लेना नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन,
बनेंगे बनेंगे
एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन। छुटकी बनेगी डॉक्टर, टर डर डर टर टर टटा, मन्ने लता मंगेशकर, लल्लू टॉप ऑफिसर एक दिन।
हम लोग के बाद जिस सीरियल ने मनोहर श्याम जोशी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया वो था भारत पाकिस्तान के विभाजन पर बना बुनियाद। कहा जाता है कि किसी उपन्यास को पहचानने का सबसे प्रमुख लक्षण है उसमें से हमेशा झलकने और कौनने वाली ऐतिहासिकता। इस कसौटी पर बुनियाद पूरी तरह से खरा उतरता है। बुनियाद की उनकी टीम में पुष्पेश पंत भी एक थे।
देखिए बुनियाद में उनके संग जोशी जी के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत ही, मैं मानता हूँ, जीवन के खूबसूरत तजुर्बों में से रहा है कि जोशी जी ने जब बुनियाद लिखने की सोची तो सिप्पी साहब उसे बना रहे थे, रमेश सिप्पी, और रमेश सिप्पी तभी तक अपनी लाइफ टाइम लीजेंड हो गए थे, शोले बना चुके थे, शान बना चुके थे, और उन्होंने जब जोशी जी से कहा कि मैं एक प्रामाणिक सीरियल बनाना चाहता हूँ बंटवारे को लेकर, और गिल साहब ने उसे सपोर्ट किया, तो उसकी रिसर्च बड़ी मज़े में की गई। कृष्णा सोबती जी और मैं उनकी रिसर्च टीम में थे। उसमें जो सबसे मज़े की चीज़ थी कि जोशी जी कोई दृश्य दिखा रहे होते थे और कैलेंडर में कोई तारीख होती थी, तो उनका हट ये होता था कि ढूंढ के लाओ कि उस दिन लाहौर में उस तारीख को कौन सी फिल्म दिखाई जा रही थी, या फ्लैटी में आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर चल रहा था, या कॉलेज में अगर कोई रिजल्ट आया था तो हार जीत क्या हुई थी, कौन सफल हुआ था, किसको मेडल मिला था या झगड़ा हुआ था। तो वो ऑथेंटिसिटी जो पीरियड की थी उसने उस सीरियल में जान डाल दी, और बाद में जब वो सीरियल की किश्तें दिखाई जाती थी तो हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी सड़कें खाली हो जाती थी। पार्टीशन के बादल मंडरा रहे थे मगर इश्क भी हो रहा था मास्टर जी का वीरावाली के साथ। जो पात्र थे हाड़ मांस के पात्र थे, जो अपने घर के रिश्तेदारों जैसे लगते थे, कि जोशी जी बात से बात निकालने का गुर जानते थे, और कहीं ना कहीं अपने घटिया से घटिया नजर आने वाले पात्र के लिए उनके मन में हमदर्दी होती थी।
इन दोनों सीरियल से कहीं पहले मनोहर श्याम जोशी नाम कमा चुके थे दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं के संपादन से। दिनमान के दिनों में उनके साथ काम करने वाले प्रयाग शुक्ल याद करते हैं।
मैं दिल्ली आया था कल्पना छोड़कर हैदराबाद से 1964 में, 65-66 में उनसे भेंट हुई जोशी जी से। वासैन जी उनको बहुत आग्रह करके लाए कि आप आओ दिनमान में, एक नया समाचार साप्ताहिक शुरू हो रहा है। उन दिनों वो सहायक संपादक थे और मैं वहाँ फ्रीलांसिंग करता था। मैंने जीवन में पहली बार जब एक नाटक की रिव्यू की तो उसका कारण भी जोशी जी बने थे। एक दिन में दिनमान दफ्तर पहुँचा जहाँ जाया ही करता था, तो उन्होंने मेरी ओर एक कार्ड बढ़ाया कि तुमको शाम को आज इस नाटक को कवर करना है। तो मेरे कुछ हाथ पांव फूल गए। मैंने जोशी से कहा कि मैंने तो कभी देखता हूँ नाटक, उन पर सोचता भी हूँ, पर कभी नाटकों पर लिखा नहीं है। बोले कि अरे तो, फिर मैंने कहा तो नाटक असमिया में है। तो बोले तुमको तो बंगला आती है तो तुम असमिया समझ जाओगे, और जीवन में हर चीज पहली बार ही तो कोई व्यक्ति करता है। फिर मैं उनका दिया हुआ कार्ड लेकर मैं गया, वो नाटक देखा, कुछ जो वहाँ दूसरे थिएटर क्रिटिक आए हुए थे जिनको मैं जानता था उनसे कुछ बातें हुई।
जब ये दिनमान में आए तब भी अज्ञेय जी को ये था कि उसके बाद बड़ा ये मजाक का विषय था कि भाई जब तुम असिस्टेंट एडिटर होते हो तो तुम्हारा एडिटर इधर उधर घूमता है, तुम काम करते हो, फिर ये साप्ताहिक में एडिटर हो गए, तो क्योंकि गलती नहीं जाने दे सकते थे ना इनको, बहुत ही वो था, जब एडिटर हो गए तो तुम्हारे सब असिस्टेंट लोग घूमते हैं, तुम काम करते हो।
2002 में मनोहर श्याम जोशी बीबीसी के लंदन दफ्तर आए थे और उन्होंने भारतीय टेलीविजन में हो रहे परिवर्तनों पर विस्तार से बात की थी।
कहते थे कि भाई नेहरू जी ने और हमारे जो भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा थे उन्होंने कहा कि बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कंबाइन कर देंगे, तो जैसे हमारी राजनीति वैसे ही हमारे संस्कृति के पुरोधा जो है इस समय टीवी के, वो बेस्ट ऑफ या की जगह वर्स्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट नहीं, जैसे इसलिए उनकी जो हीरोइन होगी वो पाँव वाँव भी छू देगी, करवा चौथ भी कर लेगी, सब वो होगी, बड़ी होगी एक तरफ से, और दूसरे में जो है वो स्विमिंग सूट पहन कर कूद भी जाएगी पानी में। मतलब
मनोहर श्याम जोशी को साहित्य और पत्रकारिता के अलावा संगीत से भी असीम लगाव था।
वेस्टर्न म्यूजिक का भी इनको बहुत शौक था और बहुत वो सुनते थे, और हिंदुस्तानी क्लासिकल हो या जैसे हेमंत कुमार हैं, इनके इन्हें बहुत पसंद थे गीत।
तुम्हें जो भी देख लेगा किसी का न हो सकेगा, परी हो बला हो क्या हो तुम,
कोई भी हो अच्छा संग। मुझे लास्ट जो घटना याद है वो यही है कि शिवरात्रि के दिन ये जग्गी महाराज का कोई प्रोग्राम होता है, पंडित जसराज गा रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके, इतना अच्छा उन्होंने गाया कि हम दोनों की आंख से आंसू बह रहे थे संगीत की उत्कृष्टता के कारण, इतना सुंदर गाया।
उनका लेखन बताता है कि उन्होंने काफी दुनिया देखी थी और कई भाषाएं जानी समझी थी, ऐसा लेखक किन्हीं बने बनाए खांचों का मोहताज होकर रह भी नहीं सकता था, चाहे वो नैतिकता के खांचे हों या फिर शिल्प के।
उनका जो फोटे था वो जो जिंदगी का करुण पक्ष है उसको हल्के फुल्के अंदाज में कह के निकल जाना था कि आपका दिल बहुत दुखे नहीं है, आपको ट्रेजिक बोझ अपने कंधे पर न लगे, मगर है हादसा हो गया और आदमी हवादिस से गुजर जाता है, जिंदगी जलवों में बसर हो जरूरी भी नहीं, और जब हवादिस होते हैं तो आदमी उनको झेल लेता है, बर्दाश्त करता है, और फिर शायद कभी याद आती है तो मुस्कुरा लेता है। जोशी जी का ये अंदाज जो था चुटकी के भीतर भी एक दबी सिसकी कहीं आप सुन सकते थे, वो ठहाका नहीं लगता था, जो ठहाका लगाता था वो अपनी रुलाई रोकने के लिए कोई पात्र लगाता था, और जो आदमी रो रहा था होता था वो दहाड़ मार के नहीं रोता था, मगर उसकी सिसकी में, उस पात्र की सिसकी में कहीं ये गुंजाइश बची थी कि शायद एक हल्की सी मुस्कान जोर जबरदस्त सी निकल आए उसके चेहरे पर।
मनोहर श्याम जोशी की खास अदा होती थी कि वो न कोई पैसा अपने पास रखते थे और न ही बटुआ।
जब ये कभी शॉपिंग के लिए हम जाते थे तो आप, आज भी मेरी वो आदत है कि मेरे पर्स में कई खानों में पैसे, क्योंकि इनको जो चीज़ पसंद आ जाए, मान लीजिए हम एक छोटी सी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ से एक साड़ी हमें खरीदनी पसंद आ गई, इन्हें साड़ी यही पसंद, मैंने कभी अपनी पसंद की साड़ी नहीं पहनी क्योंकि इनकी चॉइस इतनी अच्छी थी। आज भी मेरे कॉलेज के लोग कहते हैं कि तुम्हारे साड़ी के उसमें हम डाका डालेंगे, और इन्होंने न कभी अपने कपड़े खुद खरीदे, और तो और चप्पल भी, मैं इनका 10.5 या 11 साइज आता था तो चप्पल मैं उसी हिसाब से ले आती थी कि भैया 10.5 दे दो, अगर छोटी पड़ी तो बदला लूँगी, 11 की ले लूँगी। साड़ियाँ खरीदते हुए जो पसंद आ जाएगी ना, ये दाम देखेंगे उसका कि इतना पैसा ये लेकर, अपनी जेब में तो होता नहीं था, चिंता थी नहीं, तो मुझे ये रखता था पता नहीं कहाँ पे कुछ फजीता कर बैठे हैं, इतना रख के ले जाना। आप 1000 की शॉपिंग का सोच के जाएं उस जमाने में तो 2000 आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे क्या ले बैठे हैं कि ये भी ले लो ये भी ले लो, और फिर उन्हीं के सामने कह भी देंगे क्या है हर चीज के लिए तुम ना 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 करती रहती हो।
पुष्पेश पंत को होली की वो शाम अभी तक याद है जब मनोहर श्याम जोशी के यहाँ एक बैठक रमी थी और वो अपनी पूरी फॉर्म में थे, हिंदी साहित्य के, उन्हीं के शब्दों में कहा जाए, लंपन प्रोलेटेरियट।
देहांत के कुछ दिन पहले उन्होंने एक बार कहा कि भैया होली की बैठक घर में करने का मन है, तुम आओगे? तो मैंने कहा आप बुलाएंगे ना आएंगे ऐसा सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने थोड़ा दुखी अनमने भाव से कहा कि पुष्पेश अब तो हम ढलता हुआ सूरज हैं, तो अब हमारे बुलावे पे कौन घर पे हाजिर होता है? जब सीरियल बनते थे एक्टर भी आते थे, प्रोड्यूसर भी आते थे, होली की बैठक उनके घर में हुई थी और कई पुरानी बंदिशें उस बैठक में गाई गई। तो थोड़ा उनका एक इरोटिका का भी मन, जोशी का चोल छेड़ थी, वो कहते थे कि वो चल उड़ जा भौर तो को मारेंगे, एक बड़ी पुरानी पहाड़ी होली है कि भौरा यहाँ वहाँ बैठता रहता है रस लेता हुआ नायिका के शरीर का। तो उसका प्रेमी कहता चल ये उड़ जा भौर तो को मारेंगे, ये हरकतें अगर तेरी जारी रही। तो उस दिन बड़ा मज़ा आया।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।